नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ गिरीश बुबना। गिरीश, आपका स्वागत है।
धन्यवाद शक्ति।
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को हराया। यानिक सिन्नर ने मैड्रिड ओपन 2026 का पुरुष सिंगल्स खिताब जीता और तीरंदाजी विश्व कप का दूसरा चरण कल से शंघाई में शुरू। 16 सदस्यीय भारतीय दल रखेगा भारतीय चुनौती। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 10 ओवर में 3 विकेट पर 141 रन बना लिए थे। मेजबान मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अगर अंक तालिका की बात की जाए गिरीश, तो मुंबई 9वें नंबर पर है और लखनऊ 10वें नंबर पर है, तो ऐसा माना जाए कि अनऑफिशियली पहला नॉकआउट मैच चल रहा है आईपीएल का।
बिल्कुल, एक वर्चुअल आप नॉकआउट ही कह सकते हैं कि यहाँ से अब जो रेस है प्लेऑफ्स में बनाने की वो शुरू हो चुकी है। लेकिन आज का जो मैच का जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि रोहित शर्मा इस मैच में खेल रहे हैं, लेकिन कप्तानी हार्दिक पांड्या एमआई के लिए नहीं कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव जब टॉस पे आए तो उन्होंने बताया कि रोहित शर्मा की वापसी हुई है और पिछले कुछ मैच से वो बाहर थे, और हार्दिक पांड्या के बारे में उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, तो इस लिहाज से एक ये जो बदलाव है वो टीम में है। फिर वहाँ पर ट्रेंट बोल्ट को भी आज बाहर रखा गया, कॉर्बिन बोस को लाए, और लखनऊ की टीम ने भी 3 बदलाव किए हैं शक्ति। तो इस लिहाज से देखते हुए अब इनको लग रहा है, और मुंबई एक ऐसी टीम है जो काफ़ी खिलाड़ियों को आजमा चुकी है इस आईपीएल में, इस सीजन में आप देखें तो अब सब कुछ वो करना चाह रही है कि किसी तरह से जीवित रखे अपने आप को, लेकिन अभी तक जो है उनको वो जीवनदान मिल नहीं रहा है। लगातार मैच हार रहे। अब तक आप देखें अगर पॉइंट्स टेबल की जो बात करें तो आप 9 मैच खेले, 2 जीत 7 हार, तो एनआरआर भी इनका काफ़ी नेगेटिव है। और उधर लखनऊ की बात करें तो उनका भी जो है प्रदर्शन इतना बुरा रहा है, तो इस लिहाज से अब उनको बने रहने के लिए अभी भी अनगणित में ये नहीं कह सकते कि बाहर है। अगर जीतेंगे तो इनके अब सारे मैचेस वो जीते और फिर दूसरी टीम भी हारे, तो ऐसा बहुत मुश्किल है।
जी बिल्कुल, आपको दूसरी टीमों के परिणामों पे भी काफी हद तक निर्भर होना पड़ेगा यहाँ से। आपने पॉइंट टेबल की बात की, इसी कड़ी में कल एक और मुकाबला हुआ जहां गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। पहले सुनते हैं एक रिपोर्ट।
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स ने निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर 163 रन बनाए। पंजाब की शुरुआत बेहद खराब रही और 47 रन के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। इसके बाद मार्कस स्टोनिश और सूर्यांश शेडगे ने 6ठे विकेट के लिए 44 गेंद में 79 रन जुटाए। सूर्यांश ने 29 गेंद में 57 और स्टोनिश ने 31 गेंद में 40 रन बनाए। इस साझेदारी की मदद से टीम 163 के स्कोर तक पहुंच सकी। गुजरात की ओर से सेजसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। 164 रन के लक्ष्य को गुजरात टाइटंस ने अंतिम ओवर में अपने नाम कर लिया। साई सुदर्शन की 57 रन और वॉशिंगटन सुंदर की 40 रन की नाबाद पारी ने गुजरात की जीत सुनिश्चित कर दी। विपक्षी खेमे से अर्शदीप सिंह और विजय कुमार वैशाख ने 2-2 विकेट लिए। जेसन होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
गिरीश, अगर कल के मुकाबले की बात की जाए, हमें ऐसा लग रहा था एक वक्त पे जब शुरुआत में पंजाब की पारी लड़खड़ाई और 47 रन पे 5 विकेट थे, वहां से पंजाब ने कमबैक किया, लेकिन गुजरात के पास एक अच्छा मौका था कि वो एक बेहतर रन रेट के साथ ऊपर आती और टॉप 4 में अपनी दावेदारी मजबूत करती। जीत तो हाथ लगी लेकिन वो रन रेट वाला सपना अधूरा रह गया और अभी भी 5वें नंबर पर है गुजरात।
बिल्कुल, वो तो गनीमत थी कि सेगड़े की जो पारी थी वो उसको पंजाब उबरा, लेकिन उसके बावजूद भी जब लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात ऑलमोस्ट आखिरी ओवर और आखिरी गेंद, मतलब सेकंड लास्ट गेंद पे वहां जीते, तो उनका जो गुजरात अगर आप देखें तो अभी 13 पॉइंट पंजाब के पास है, लेकिन जो 4 टीम है 12 पॉइंट पे, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, सनराइजर्स हैदराबाद है, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस। लेकिन यहां पर जो एक गौर करने की बात यह है कि गुजरात टाइटंस जो है वो नेगेटिव एनआरआर पे है, नेगेटिव रन रेट पे है, और अब यहां पर उनको स्थिति सुधारनी पड़ेगी। अब ये जो मैचेस जो आखिरी ओवर तक वो ले जा रहे हैं, छोटे टारगेट को लक्ष्य की अपेक्षा करते हुए इतने आखिरी ओवर तक जाएंगे तो उनका रन रेट जो है और भी खराब होगा। अब उनका जो मैच बचेगा वो जयपुर में राजस्थान रॉयल्स से है, जो चार मैचेस है, अहमदाबाद में खेलेंगे अपने घर पे एसआरएच के खिलाफ, और फिर कोलकाता जाएंगे वहां पर नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलेंगे, और फिर अहमदाबाद वापस आके सीएसके के खिलाफ खेलेंगे। तो यहां पर आप देखें तो आरआर जो है वो अभी बेशक उन्होंने एक मैच हारा जीता पिछला, लेकिन वो भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। तो वहां पर अगर उनको कोई टीम मिलती है तो वो केकेआर, लेकिन केकेआर भी जीत रही है अभी एक दो मैचेस, और फिर सीएसके वो भी पटरी पे आ रही है, तो उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। और रही बात पंजाब की, पंजाब जो है एक टीम जो जीतते आ रही थी लगातार, और दो मैचेस उन्होंने बैक टू बैक गवा दिए जिस वजह से वो 13 पे ही रुके, और उनके जो मैचेस हैं वो एसआरएच, फिर डीसी, फिर एमआई, आरसीबी और एनएसजी के खिलाफ होंगे। तो इस लिहाज से कोई एक टीम ये देखे कितना एक खुला हुआ आईपीएल इस सीजन का है, जहां पर अभी भी 6 टीम 7 टीम जो है वो प्लेऑफ्स में बनी हुई है। तो अब हर एक मैच इन सब के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है, चाहे कोई भी टीम। हमें लग रहा था कि पंजाब किंग्स जो है, हालांकि उनको दो ही मैच जीतना है, दो मैच अपने 5 में से 2 मैच जीते और वो प्लेऑफ्स में पहुंच जाएंगे, लेकिन फर्स्ट में होते हैं सेकंड में होते हैं वो भी एक निर्णायक बात होती है। प्लेऑफ्स में ना पहुंच के सिर्फ उनको एक जीवनदान भी होता है कि अगर आपने पहला एलिमिनेटर हारा तो फिर आपको एक मौका भी मिलता है। तो यहां पर अब हर एक टीम को रणनीति बनानी पड़ेगी कि वो लाइटली ना ले और अपने मैचेस जो है इजिली जीत के फिर अपनी पोजिशन को सुदृढ़ करें।
जी बिल्कुल, जो कि पंजाब टेबल में देखा जाए तो टॉप पर है, लेकिन पिछले 2 मैच में हार मिली है और उस लय में भी नजर नहीं आ रही टीम शायद, जहां पे प्रभ सिमरन बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे लगातार और मिडल ऑर्डर में भी मजबूती थी, शायद थोड़ी सी गाड़ी पटरी से उतरती भी नजर आ रही है क्या पंजाब की?
हाँ, मतलब पंजाब की गाड़ी ऐसे इस लिहाज से तो नहीं देखे, लेकिन उनके जो काफी जो बैटिंग लाइनअप देखें और जो कप्तानी देखें श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में, तो वहां सब तो काफी कुछ है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो रन जो उनके बॉलर्स जो है वो कंसीड करते हैं वहां पर रोकना होगा, अर्शदीप को अपनी मेन भूमिका में रखना होगा। तो ये सब चीजें जो चुनौती जो है अब टीम के पास कि वो कैसे अब अपने प्लेइंग 11 और एक इम्पैक्ट प्लेयर को कैसे वो यूज करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होगा।
जी बिल्कुल, पंजाब की नजरें भी होंगी कि उस लय को और उस फॉर्म को मेंटेन रखा जाए ताकि जब प्लेऑफ में पहुंचे तो फिर कम से कम पहले या दूसरे स्थान के साथ टीम आगे बढ़े। विश्व के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी यानिक सिन्नर ने मैड्रिड ओपन 2026 का पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया। यानिक ने फाइनल में अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को 6-1, 6-2 से हराया। एक रिपोर्ट।
यानिक सिन्नर के लिए मैड्रिड ओपन 2026 की राह अपेक्षाकृत आसान नजर आई, क्योंकि 58 मिनट तक चले फाइनल मुकाबले में सिन्नर ने एक तरफा जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही सिन्नर ने लगातार 5वां एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। 1990 में इस सीरीज की शुरुआत के बाद वो ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये खिताब उनके करियर का 9वां मास्टर्स 1000 खिताब भी है। सिन्नर इस सीजन के शुरुआती चारों मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने बिना कोई सेट गंवाए सनशाइन डबल पूरा किया और फिर मोंटे कार्लो में कार्लोस अल्काराज को हराकर खिताब जीता। अब सिन्नर करियर गोल्डन मास्टर्स पूरा करने से सिर्फ एक खिताब दूर हैं। ये उपलब्धि अब तक केवल नोवाक जोकोविच ने ही हासिल की है। सिन्नर के पास अपने घरेलू टूर्नामेंट रोम मास्टर्स में ये मकाम हासिल करने का एक बड़ा ही अच्छा मौका होगा। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
23-24 वर्षीय इटली के खिलाड़ी ने पिछले 3 सालों में जिस प्रकार कोर्ट पर अपने प्रदर्शन को, अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को इनहेंस भी किया है और प्रदर्शित किया है, कितनी संभावनाएं नजर आती हैं जो हम लोग औरा की बात करते थे आज से 5-6 साल पहले, राफेल नडाल, रोजर फेडर जैसे खिलाड़ियों में, क्या उस लाइन में है यानिक?
बिल्कुल, मतलब आपने अपने रिपोर्ट में बताया कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड जो एटीपी मास्टर्स टूर्नामेंट होते हैं 9 में से जो पिछला, अभी इस साल तो 4 लगातार जीतते हुए आए, इंडियन वेल्स और मियामी ओपन, मोंटे कार्लो मास्टर्स, मैड्रिड ओपन, और उससे पहले पेरिस मास्टर्स को उन्होंने जीता। अब जो बचे हुए वो 4 जो अपने, उनका सबसे बड़ी जो प्रतियोगिता जो 5वीं इस साल की होगी वो इटालियन ओपन घर पे ही है, और उसके फिर कैनेडा ओपन, सिनसिनाटी और संघाई मास्टर्स में वो भाग लेंगे। लेकिन कितने मजबूत है मनोवैज्ञानिक तौर पे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था तो ये उनके कैरियर की सबसे बड़ी जीत थी, और उन्होंने फाइनल में दानिल मेदवेदेव को 2 सेट में पिछड़ने के बाद वहां पर हरा के वो ग्रैंड स्लैम जीता। तो क्या है उनकी खासियत, जो खेल में सुधार और मानसिक मजबूती है उनकी, वो सर्विस और पावर, सिनर की पहली सर्विस अब से पहले कहीं ज्यादा घातक हो गई है। उनके ग्राउंड स्ट्रोक में इतनी पावर है कि जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी है वो बेबस नहीं जाते। आप अगर देखें तो जेवरेव भी जो है फाइनल में वहां पर इस भुक्तभोगी थे,
बिल्कुल सरेंडर करते हुए नजर आए।
और फिर फिटनेस, मतलब पहले सिनर ने लंबी थकान या चोटों की वजह से वो समस्या होती थी, लेकिन अब वो उस पर उन्होंने काम किया, फिटनेस पे काम किया। तो अगर लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो अगर जोकोविच को देख लें, आप किसी अन्य खिलाड़ी को देख लें जो टॉप शीर्ष पे अपना लगातार वर्चस्व बना के रखते हैं, तो उनको इन समस्या से दो चार तो होना ही पड़ेगा। अपनी फिटनेस वो कैसे रखते हैं, कैसे बरकरार रखते हैं, वो एक खिलाड़ी की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है।
जी बिल्कुल, और युवा खिलाड़ी हैं और अपनी पूरी जान झोंकते हैं। आपने मनोविज्ञान की भी बात की, इसी टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल में एक वक्त आया था जहां एक सेट हारे और फिर कमबैक किया, जीते और एक शानदार सेमीफाइनल में जीत और उससे ही शानदार फाइनल में जीत। तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में 16 सदस्यीय भारतीय टीम अपनी चुनौती पेश करेगी। ये प्रतियोगिता कल से 10 मई तक शंघाई में खेली जाएगी। एक रिपोर्ट।
5 दिन तक चलने वाली यह प्रतियोगिता 5 मई को कंपाउंड तीरंदाजी क्वालिफाइंग राउंड से शुरू होगी। दूसरे चरण में 44 देशों के 300 से अधिक तीरंदाज भाग लेंगे, क्योंकि अधिकांश एशियाई देशों की टीमें इस साल के अंत में होने वाले एशियाई खेलों पर नजर रखते हुए मजबूत टीमें उतार रही हैं। सीजन के पहले टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन मिला जुला रहा, केवल महिला कंपाउंड टीम पोडियम पर जगह बनाने में कामयाब रही। अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो शंघाई में महिला रिकर्व में दीपिका कुमारी, अंकिता भाकत, सिमरनजीत कौर और कुमकुम अनिल मोहत तथा पुरुष रिकर्व में धीरज बोम्बा देवरा, अतानु दास, तरुणदीप राय और यशदीप संजय भोगे चुनौती रखेंगे, जबकि महिला कंपाउंड में ज्योति सुरेखा चेन्नम, अदिति स्वामी, प्रगति और मधुरा धामन गांवकर तथा पुरुष वर्ग में अभिषेक वर्मा, ओजस देवतले, कुशल दलाल और साहिल जाधव भारतीय दल का हिस्सा है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
तो उम्मीदों के शिखर पे सवार भारतीय तीरंदाजी दल अब शंघाई में अपनी चुनौती पेश करेगा। बात निशानेबाजी की कर लेते हैं, जहां 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में आज राजस्थान की अंजलि शेखावत ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंजलि ने 240.5 का स्कोर बना करके शीर्ष स्थान हासिल किया।
बिल्कुल, ये ग्रास रूट टूर्नामेंट है, सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग और एनआरआई के पूर्व प्रेसिडेंट रहे, उनके नाम पे ये इवेंट है और इसी इवेंट से फिर आगे आपको जो है ओलंपिक क्वालिफिकेशन, फिर अंक आपको मिलते हैं कि नेशंस खेलने के लिए। और अंजलि शेखावत राजस्थान से आती है, खेलो इंडिया में प्रतिभागी रह चुकी है और इस खेल में ईशा सिंह जैसी जो आपकी निशानेबाज है वहाँ उनकी मौजूदगी होने से आप एक ओलंपिक प्रतियोगी के सामने अगर हैं आप, तो उससे भी आपको बहुत फायदा मिलता है। और इस तरह के टूर्नामेंट ग्रास रूट है जो आगे मेडल्स जो अभी हमने 10 मीटर का देखा वो फिर नेशनल्स और फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल मेडल्स में वो तब्दील करते हैं।
जी बिल्कुल, और अगर 10 मीटर एयर पिस्टल की बात की जाए तो भारत के लिए तो हमेशा एक फेवरेट इवेंट रहा है, एक फेवरेट ट्रैक रहा है भारत के लिए ये इवेंट। और फुटबॉल की बात करते हैं, भारत की अंडर 17 फुटबॉल महिला टीम कल एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप में जापान का सामना करेगी। भारत को ग्रुप बी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था, ऐसे में टीम इस हार से उबर करके टूर्नामेंट में वापसी करना चाहेगी। भारत के लिए यहां से हालांकि देखा जाए तो गिरीश हर एक गोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि सामने जापान है, लेबनान को 13-0 से हरा करके आई है वो टीम यहां पर, तो चुनौती होगी।
बिल्कुल, काफी चुनौती होगी, एशियन पावर हाउस है जापान, 13-0 आपने कहा, लेकिन इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया से खेला था, वहां पर हम 2-0 से हार गए थे, उसमें एक अपना ओन गोल भी था। लेकिन अगर भारतीय जो कोच है पाउला कॉन्टी, उन्होंने बताया कि अब जो है वो काउंटर अटैक और उस पर वो काफी ध्यान दे रहे हैं, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि जापान बेशक एक पावर हाउस है, लेकिन अंडर 17 की ये लड़कियां जिन्होंने पिछले कुछ समय में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उनको एक अनुभव अच्छा मिलेगा।
जी बिल्कुल, एक अच्छे अनुभव की उम्मीद होगी इन खिलाड़ियों को और उम्मीद ये भी होगी कि उस हार से उबर करके एक बेहतर जीत के साथ टीम आगे बढ़े। आईएसएल फुटबॉल लीग में ओडिशा एफसी और बेंगलोर एफसी के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक ओडिशा ने बेंगलोर पर 1-0 की बढ़त बनाए रखी है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। गिरीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।